ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में नौसेना गोदी में तीन अग्रणी नौसेना युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को नौसेना में शामिल किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्धपोत भारतीय रक्षा बलों और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
21वीं सदी का भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुलामी के प्रतीकों से भी मुक्त हो, और हमारी नौसेना ने इसमें भी नेतृत्व दिखाया है। नौसेना ने अपने ध्वज को छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली परंपरा से जोड़ा है।
तीनों युद्धपोत रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसकों में से एक है। INS नीलगिरी P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत है। इस आयोजन के बाद श्री मोदी नवी मुंबई के खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस्कॉन परियोजना का ये मंदिर 9 एकड़ क्षेत्र में बना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर स्पेन की 2 दिन की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति सांचेज की भारत की सफल यात्रा को याद करते हुए दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि की। उन्होंने स्पेन के राष्ट्रपति को मैड्रिड में हुई चर्चा और दोनों देशों के आपसी वार्ता में हुई प्रगति की जानकारी दी। सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने को मंजूरी दी है। इससे बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नई बटालियन में विभिन्न रैंकों के लगभग 1025 सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे और इसका नेतृत्व वरिष्ठ कमांडेंट स्तर का अधिकारी करेगा। 77वां थल सेना दिवस आज गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र मातृभूमि की सेवा में उनके द्वारा दिए गए बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है और सशस्त्र बलों तथा उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संदेश में जनरल चौहान ने कहा कि ये दिन भारतीय सेना के अटूट समर्पण और साहस का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले की बुद्धल तहसील के बदहाल गांव में रहस्यमय बीमारी ने पिछले 24 घंटों में 2 और लोगों की जान ले ली है। दिसंबर 2024 के बाद से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कल मौतों के कारणों की जांच के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पावन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। उत्तर रेलवे ने महाकुंभ मेला 2025 में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और प्रयागराज के बीच 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कई स्थानों पर घने से काफी घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सुबह 9 बजे दिल्ली की दृश्यता कम होकर 0 मीटर हो गई। आज सुबह इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उड़ानें बाधित हुईं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का फाइनल और अंतिम मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 29वें ओवर में 242 रन बना लिए हैं। खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम का मुकाबला आज शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ईरान से होगा। इसके बाद भारतीय पुरुष टीम का सामना पेरू से होगा। ये मैच रात 8:15 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।